दोस्तों, SBS हिंदी के स्टूडियो में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ पूर्व पत्रकार, भारत के जाने माने लेखक, जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन के माध्यम से भारत दिखाया है लोगों को विश्व भर में, सुदीप चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। सुदीप, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग?
सुदीप जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता छोड़कर लेखनी की ओर आपका रुख कैसे हुआ?
देखिए भैया, पत्रकारी में भी तो हम लिखते ही थे, तो पेशा था पत्रकारी, बहुत साल किया पत्रकारी, लेकिन मैं सोचा कि कभी पत्रकारी करते करते कि काफी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो पत्रकारी के नाते हम लिख नहीं पाते, कवर नहीं कर पाते हैं, वो आप कहें कि मैनेजमेंट के दौरान, मैनेजमेंट के जरिए कि वो लोग चाहते हैं कि आप इस पे मत लिखो, कि इस पर्सनालिटी पे मत लिखिए, कि इस सब्जेक्ट पे मत लिखिए, इस कंपनी पे मत लिखिए, इस पॉलिटिशियन नेता के बारे में मत लिखिए, क्योंकि उनका एक, हम भूल जाते हैं कि पत्रकारी में ओनर भी रहते हैं, मालिक भी है पत्रकारी का। तो हम सोचते हैं कि जब हम सांवादिक होते हैं या संपादक होते हैं या पत्रकारी करते हैं कि उसका शुरुआत और अंत हम में ही है, लेकिन वो सही बात नहीं, हमारे ऊपर हमारे मालिक लोग रहते हैं
जी।
तो मालिकाना के नाते कई बार ये ऐसा होता है कि जो हम पत्रकारी करते करते जो हम समझते हैं कि ये लिखना या कवर करना जरूरी है, वो हो नहीं पाता। और हमने देखा कि, मैंने खुद देखा कि 20-25 साल पत्रकारी के बाद मैं इस सिचुएशन, एक जगह में पहुंच गया था जहां पर्सनली स्पीकिंग मेरे हिसाब से काम सही नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पत्रकारी से फॉर्मली निकल के मैं अपना पत्रकारी खुद चलाऊंगा, अपने हिसाब से, अपने मालिकाना से, और किसी को मैं जी हुजूरी, किसी का जी हुजूरी नहीं करूंगा। इंडिपेंडेंट, स्वाधीन पत्रकारिता के ना जो करूंगा, इसका मैं डिसीजन लिया था। तो मैं साहित्य लिखना शुरू किया, फिर नॉन फिक्शन भी लिखना शुरू किया। तो आप कह सकते हैं कि पत्रकारी में, दिल में, दिमाग में मैं पत्रकार हूं अभी तक, संपादक हूं अभी तक, लेकिन अच्छा लगता है कि लोग, जैसे आप जैसे लोग हमको बुलाते हैं और कहते हैं कि लेखक या दार्शनिक या जो भी कुछ कहते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन दिल में तो मैं पत्रकार अभी भी हूं।
जी सुदीप, बात करते हैं, आप भारत के कई क्षेत्रों में पले बड़े हैं, पढ़ाई कहीं की, पैदा कहीं हुए, आप काम कहीं किया, उसके बाद आप अपनी पत्रकारिता में भी काफी रिस्की सब्जेक्ट्स को लेकर जाने जाते थे, और किताबों में भी आपने नेक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, CSR इश्यूज जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज जिसे हम कहते हैं, आपने एक बहुत विस्तृत रूप से इन पर लिखा है। जब आप फिक्शन और नॉन फिक्शन के चश्मे से भारत को देखते हैं तो आपको कैसा नजर आता है?
देखिए, मैं भारतवासी हूँ, मेरा पासपोर्ट भारत का है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतवासी, यह मैं पहले बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आजकल के जमाने में, या कुछ साल पहले से यह शुरू हुआ है कि पहले जैसे हम डिफेंसिव हो जाते थे कि इंडिया के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना, लेकिन क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हमको तो अपने देशवासियों के बारे में भी तो सोचना है, अपने देश के बारे में भी तो सोचना है। डिस्कशन जरूरी है, क्रिटिसिज्म जरूरी है, प्रेज भी जरूरी है, अच्छा भी कहना जरूरी है। लेकिन मैं ये डिसीजन लिया ये सब्जेक्ट्स डिस्कस करने के लिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना जरूरी है, तो हमारे जो वीक लिंक्स है, जो हमारे देश में लोग जो हैं, पीड़ित जो हैं, कहानियां जिनका सुना नहीं जाता है ठीक तरीके से, क्योंकि हमारे में दिमाग में भी आजकल एक, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ मॉल स्टूपर, कि आप एक मॉल के अंदर घुस जाए और एकदम भुलभुलैया जैसे आप वहां जाएं और आप भूल जाते हैं कि बाहर एक देश है, करोड़ों लोग हैं, ये सब आप भूल जाते हो। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है
जी।
और अगर हम इकट्ठा, हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ, अगर गरीब लोग मिडिल क्लास तक एस्पिरेशन करना नहीं है, अगर गांव वाले ठीक से खाना पीना उनका नहीं होता है, रोजी रोटी नहीं होता है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा ड्यूटी है कि मैं इन चीजों पे लिखूं, ताकि जो मॉल के भुलभुलैया में घुस के दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर में, कलकत्ते में घुस गए हैं और निकलना नहीं चाहते, उनको मैं सुनाऊं, उनको मैं बताऊं कि भैया ये भी देश है
जी।
और हम एक साथ देशवासी हैं, एक देश के, तो आप इनका भी देखिए, इनका भी सोचिए, इनके कहानियां भी आप सुनिए। अगर आप मानते ही नहीं है कि ये देशवासी हैं आपके, तो आप खुद आगे कैसे बढ़ोगे?
जी सुदीप, आपने बात की देश और विश्व की
जी,
और जनता की, जिस तरीके की जनता होती जा रही है, जो कैपिटलिज्म के जाल में फंसती जा रही है कहीं विश्व भर में, और हाल ही के कुछ राजनीतिक फैसले और राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका में ट्रंप सरकार की बात को लेकर लोग काफ़ी ट्विटर सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं कि कुछ नेताओं का जो उदय हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, वो कुछ इस तरीके का है जो हमारे समाज के बारे में, हमारे विश्व के बारे में कुछ कहता है, उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से बढ़ी है, इस पर आपका टेक क्या है?
भैया मैं सोचता हूँ कि ये तो हाँ, दुनिया में बहुत जगह विश्व में हो रहा है, और एशिया में भी हो रहा है, साउथ एशिया में भी हो रहा है कई सालों से। ये मैं सोचता हूँ कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल सा है, क्योंकि एक सोसाइटी में ट्रेंड्स होते हैं, फेजेस रहते हैं। तो ये हमारे दुनिया में, आप अमेरिका में देखिए, वेस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में देखें, और कहीं और भी देखेंगे, तो ये एक चलन जो है, प्रचलन भी है आप कह सकते हैं, कि ऐसे लीडर्स, ऐसे नेताओं का आना, ऐसे नेताओं का पॉपुलैरिटी बढ़ना, ये हमारे सोसाइटी का और हमारे खुद का, जो हम जहाँ पहुँचे हैं उसी का उदाहरण है, उसी का नतीजा है। वो लोग ट्रंप के बारे में तो आप हंसी मजाक तो हम करते रहते हैं, इनफैक्ट मैं सुबह उठ के मैं यूट्यूब में जाता हूँ और वहाँ के सारे अमेरिका के फेमस जो टॉक शोज जो हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ, कि उसके बाद मेरा दिन एकदम
अच्छा गुजरता है
कि मैं थोड़ा हंसी मजाक से। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, और हम कहीं का भी सिटीजन्स हों, हमारा ड्यूटी है कि देखना कि जो नेता चुन के जो आते हैं निर्वाचन के बाद, जो हम ही तो चुनते हैं उनको, उनके बाद उनको तो हम ही वोट देते हैं या ना दें
जी,
तो इनका जो चुनना, इनका वहां तक पहुंचना, ये तो उसके लिए तो हम भी तो जिम्मेदार हैं कि हम ही तो उनको पहुंचाते हैं यहाँ तक।
सुदीप, आप अपनी लेखनी में ह्यूमन राइट्स इशू की काफी बात करते हैं, मानवाधिकारों की, साथ में ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया में, दोनों में ही कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो खनन में जुड़ी हुई हैं, और यहां पर काफ़ी हाय तौबा मची कि ये कंपनी को मत आने दो यहां पर, क्योंकि इसका सीएसआर और एथिक्स का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ख़राब है। आपकी किताबों में से हम ऐसी क्या 3 या 4 टिप्स ले सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के परिदृश्य में?
देखिए मैं एकदम दिल से मैं बोल रहा हूँ साफ साफ कि कंपनी कभी एथिक्स पे डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो अर्निंग्स पे डिसीजंस लेते हैं। और ये खनन में जो कंपनीज जो हैं, खनिज माइनिंग में जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में देखिए कि इंडिया में देखिए, कहीं भी देखिए, उनका वो बिजनेसेस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होता है इन बिजनेसेस में। आप अडानी का सोचिए या BHP का सोचिए, जो भी देखिएगा, जहाँ पे हजारों हजारों हेक्टेयर आपको जमीन चाहिए, वहाँ के जो कम्युनिटी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो है, ये तो अफेक्टेड होगा ही। और मैं देख चुका हूँ कि माइनिंग कंपनी, जैसे मैं गोवा में रहता था 12 साल, वहाँ एक माइनिंग कंपनी था, अभी वेदांत ग्रुप का है, के अंडर है, वहाँ के एक सज्जन बोले, मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वी आर कंडक्टिंग अ इको फ्रेंडली बिजनेस। तो मैं उनको जाके बोला कि भैया आप क्या लोगों को उल्लू बना रहे हैं, आप किसको उल्लू बना रहे हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग सोच नहीं सकते, आप बोल रहे हैं कि माइनिंग इको फ्रेंडली एक्टिविटी है, आप शर्म कीजिए थोड़ा, लोगों को इतना उल्लू मत बनाइए, आप कोशिश कीजिए कि आपको जो आपको धंधा करना है, लेकिन आप लोगों का तो सोचे, आप अगर कहें कि आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप लोगों को बेकार करके, लोगों का जो पहला जो लाइव्स और लाइवलीहुड जो बोलते हैं उनको वो खत्म करके आप क्या प्रॉफिट करेंगे? कम्युनिटी के साथ आपको एंगेज रहना है, उनका आपको लोकल कम्युनिटी का भलाई हो तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर भलाई नहीं करेंगे तो वो प्रोटेस्ट में आएगा, आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक्स होगी, आपका बैड पब्लिक रिलेशंस होगा, अखबार टीवी पे आपका गलत खबर निकलेगा, तो आप ये चाहते हैं, और वो जब गलत खबर निकलता है आपके शेयर प्राइसेस डूबते हैं, आपको पब्लिक रिलेशंस फर्म जुगाड़ करना पड़ता है कि अच्छे चीजें बोलने के लिए। तो आपको सोचना चाहिए कि गुड CSR एंड गुड एथिक्स इज गुड फॉर बिजनेस, ये मेरा कहें तो मेरा स्लोगन है, मैं जो लिखता हूँ लोगों को, बिजनेसों को बोलता हूँ कि आपको ज्यादा अर्निंग्स चाहिए तो आपको ज्यादा एथिक्स अपनाना पड़ेगा, आपको बिजनेस चाहिए तो आपको राइट्स अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ये चीजें अपनाएंगे आपके पास नेचुरली अर्निंग्स बढ़ेगा।
सुदीप, अब बात करते हैं आपकी लेखनी की।
जी,
आपकी बातों से लगता है कि भारत तो आपकी लेखनी में बसा ही हुआ है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस की जो बात होती है, अपने निजी अनुभव, वो कितना उभर कर आते हैं आपकी लेखनी में?
ये ज्यादातर होता है जब मैं फिक्शन लिखता हूँ, आप शॉर्ट स्टोरी कहें कि नॉवेल्स पे बात करें, तो तब कई बार, जैसे मेरा पहला किताब जो लिखा था मैं 2005 में, टिनफिश नाम है किताब का
जी,
तो जब मैं पहला ड्राफ्ट लिखा था किताब का, मैं खुद के बारे में खुद का कहानी लिखी, और उसके बाद मैं जब ड्राफ्ट पढ़ा, मैं बोला कि ये किताब कोई नहीं खरीदेगा। मैं सोचा कि यार मेरा लाइफ इतना बोरिंग कैसे हो गया। तो मैं बोला कि जैसे हम सोचते हैं कि जो अपने लाइफ के बारे में लिखें तो उतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, तो मैं उसके बाद वो ड्राफ्ट पूरा डिलीट करके मैं दोबारा लिखा, तब वो कहानी सही निकला। और ये बहुत जरूरी है कि अपने बारे में लिखे, आत्मकथा आप लिखें, लेकिन लिखना चाहे जरूर लिखे, बेशक लिखे, लेकिन जब पाठक जब वो पढ़ेंगे तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, पूरा एक लार्जर मैसेज, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस पे ध्यान दें।
सुदीप, आत्मकथा से अब जीवनी की ओर ले जाता हूँ, और अब आप कुछ ऐसा करने वाले हैं अपने अगले प्रोजेक्ट में कि जो शायद भारत में अब तक किसी ने ना किया हो, एक पूरे समुदाय की, एक समाज की जीवनी लिखने वाले हैं, बायोग्राफी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे।
जी, मैं ये अगला किताब जो मैं जो निकलेगा इस साल, ठीक ठाक रहे शेड्यूल, तो 2017 के अक्टूबर नवंबर तक ये निकलेगा किताब, द बंगालीज पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल। तो आपने सही कहा कि एक समुदाय का बायोग्राफी है, लेखनी है, तो ये पहले लिखा नहीं गया है, और हम भूल जाते हैं कि भारत में रह के जो भारतवासी जो है, यहाँ बंगाली तो है, बहुत करोड़ों बंगाली है पश्चिम बंगाल में, और एक हमारा भारत में भी डायस्पोरा है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आप बॉम्बे के तरफ, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में, बहुत सारे बंगाली हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बांग्लादेश वाले भी तो बंगाली हैं भैया, वो तो जंग लड़े हैं बंगाली होने के लिए, पाकिस्तान से निकल आए हैं उर्दू के खिलाफ, सिर्फ बंगाली बोलने के लिए और बंगाली होने के लिए। तो हम भूल जाते हैं कि आप बंगाली का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देखें तो वो बांग्लादेश में है। तो मेरा जो ये जो जीवनी है, समुदाय जीवनी, आप जो कहें कम्युनिटी बायोग्राफी आप कहें, ये तो हमारे यहाँ के बंगाल के भी है, पश्चिम बंगाल के, बांग्लादेशी के बारे में भी है, असम में जो बंगाली हैं वो, और हम जो कहते हैं कि प्रवासी, हमारे भाषा में बोलते हैं कि प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी जो है उनके बारे में भी है। तो मैं सोचता हूँ कि इस साल अक्टूबर नवंबर में मैं बंगाली नॉन ग्राटा बन जाऊंगा। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ जो पढ़े लिखे बंगाली जो हैं, वो सारे हमारे किताब पे चर्चा तो जरूर करेंगे, शायद कहेंगे कि ये क्या लिखा है सुदीप ने, ये बंगाली पे लिखा है, सब गलत लिखा है, या कोई बोलेगा बहुत सही लिखा है। तो मैं ये आने वाला जो जंग होगा बंगालियों के बीच में,
उसका मैं कारण होंगे,
और मैं आशा करता हूँ कि जंग बहुत बड़ा जंग हो
जी,
क्योंकि ये जंग होना जरूरी है, क्योंकि हम बंगाली काफी एरोगेंट भी होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कल्चर सिर्फ हमारे पास ही है ये, और
पंजाबियों के पास तो बस एग्रीकल्चर है।
हाँ, और क्या, आपने सही कहा। लेकिन भैया, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो फेवरेट खाना जो है
जी,
जो जनवरी फरवरी में, 25 साल में दिल्ली में रहा हूँ, मेरे लिए भैया सरसों का साग और मक्के की रोटी, बस ये बहुत प्यारा है। और मैं राजस्थान में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ आप मुझे दाल बाटी चूरमा खिलाएं, बिहार में मुझे क्या आलू और वहाँ का वो स्पेशल, झारखंड और बिहार में खाते हैं
झालमुड़ी की तरह जो,
वो तो बंगाली, वो बेस्ट झालमुड़ी कलकत्ता में,
कलकत्ता का,
आगे मत बढ़िए उसके आगे।
अब आप केरला के एक छोटे से गांव में रह के बंगालियों पे लिख रहे हैं, तो केरला का क्या पसंद आता है आपको?
अप्पम, स्टू, उनके, देखिए यही तो भारत का सबसे बढ़िया चीज है, आप कहीं भी जाएं, बढ़िया से बढ़िया लोग मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया इतिहास, बढ़िया से बढ़िया कल्चर, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना।
सुदीप, इतनी बढ़िया बातें करने के लिए, SBS हिंदी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए।
तो ये थे लेखक सुदीप चक्रवर्ती, जो बात कर रहे थे SBS हिंदी से।